यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 14 अध्याय 24 श्लोक संख्या 20 पर 8 अप्रैल 2007 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना वाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक नंबर 20 समुद्रम उपाविस्तीर्णम अपाश्यंत महत्सलः महन्मना इवास्वाचम प्रसन्ना सलिलाशयम ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलक्य चक्षुरन्मीलितमेन तस्मावे नम श्रीचैतन्य मनोभिस्तम सर्वदा मेन भूतले स्वयं रूपा कलामयम् ददाति स्वापनातिकम् सा समुद्रम उपाविस्तीर्णम अपाश्यम समहत्सरः महन्मना इवास्वाचम प्रसन्ना शैलशायम। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि महाराज प्रचिन भाड़ी उनके 10 पुत्र थे और उनकी इच्छा यह थी प्रमाण महाराज प्रचिन भाड़ी पूरे पृथ्वी के राजा थे। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और पुत्रों ने यह निर्णय किया कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमें तपस्या का पालन करना चाहिए। गृहस्थम और गृहमेदी ये दो संस्कृत के शब्द हैं। गृहमेदी के द्वारा ये समझा जाता है कि व्यक्ति पति पत्नी जीते हैं भौतिक सुख इंद्रिया तृप्ति के लिए और गृहस्थ एक आश्रम माना जाता है। जैसे ब्रह्मचारी एक आश्रम है वानप्रस्थ एक आश्रम है संन्यास एक आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में मूल भाव ये होना चाहिए भगवत प्राप्ति और ये केवल जब संभव है अगर किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान हो शिक्षा हो। तो चेतस ने 10,000 सालों के लिए बहुत गहरी तपस्या का पालन किया। तो आप कहोगे हमें तो आपके शास्त्रों में विश्वास नहीं है, 10,000 सालों के लिए कोई जी सकता है क्या? आज के विज्ञानियों को या भौतिकवादियों को आप कहो कि प्रचेतस ने 10,000 वर्षों के लिए तपस्या की थी तो क्या कहेंगे? ये माइथोलॉजी है। जैसे कि हमारे देश में और पश्चिम स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो वैदिक साहित्य है ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब किसी की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है ये। एक महीने पहले मैंने पढ़ा था एक अखबार में एक लेख जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा रिसर्च ये बताता है कि कृष्ण और राम कभी हो ही नहीं पृथ्वी पर, ये लोगों की कल्पना है। 2 पेज फुल पेज का आर्टिकल था एक हिंदू के द्वारा जिसमें वो यही कह रहा है कि कृष्ण और राम हो ही नहीं थे पृथ्वी पर, ये लोगों की कल्पना है। तो इसी प्रकार जब आज के वातावरण में आप कहो कि 10,000 सालों के लिए तपस्या की थी तो लोग शायद विश्वास नहीं करें। ये घटना बीती थी सतयुग में और सतयुग में लोगों की अवधि थी लगभग 1,00,000 साल। 1,00,000 साल तक लोग जीते थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और 10 गुना कम हो गया, 10,000 साल। द्वापर युग में और 10 गुना कम हो जाता है 1,000 सालों के लिए। और कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और वो भी आप देख सकते हो लाखों में एक व्यक्ति से जीता है 100 साल के लिए। तो प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए तपस्या की और उन्हें भगवान शिव जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और शिव जी ने क्या दिया उन्हें? उन्हें एक मंत्र दिया जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है। शिव जी जो हैं वैष्णव हैं, आजकल की प्रजा सोचती है नहीं हम तो शिव जी के भक्त हैं तो हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। तो शिव जी खुद भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, जैसे कि जो मंत्र उन्होंने प्रचेतस को दिया, प्रचेताओं को दिया, ये मंत्र को क्या था? परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और भागवत में आप कथा पढ़ते हो 10वें स्कंद में किस प्रकार शिव जी की सुरक्षा हुई थी परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। एक भृकासुरा नाम का राक्षस था जिसने शिव जी द्वारा एक खास वर प्राप्त किया था। क्या था वर? शिव जी के अनेक नामों में एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है जो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं वो जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं। तो वृकासुरा गए थे पर्वत कैलाश में और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि शिव जी वहाँ नहीं थे उपस्थित, तो अपने शरीर से चमड़ा काट कर काट रहे थे। शिव जी लौटे, उन्होंने कहा ये क्या क्या कर रहे हो, अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? हमें शरीर को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि देह परम भगवान इसके मालिक हैं। जब आप इस देह का उपयोग करते हो भगवान से स्वतंत्र कार्य में, जब आप इस देह को कष्ट दे रहे हो, और जब आप इस देह का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, आप इस देह का सदुपयोग कर रहे हो। तो शिव जी ने देखा कि ये वृकासुरा अपने शरीर के सारे चमड़े को काट कर फेंक रहा है और उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक खास वर चाहिए। क्या वर चाहिए? जहां भी मैं हाथ रखूंगा हर चीजें उसके नीचे होगी, क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ये वर प्राप्त हुआ, वृकासुर ने इस वर का उपयोग करने का प्रयास किया शिव जी के ऊपर, परंतु उनकी सुरक्षा किसने की? परम भगवान श्री कृष्ण। तो यहां आप देखते हो कि प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए गहरी तपस्या का पालन किया और उस मंत्र का उच्चारण किया जो कि उन्हें प्राप्त हुआ था शिव जी के द्वारा। और इस मंत्र को प्राप्त करके, तपस्या का पालन करके, महाराज प्रचिना भारे के जो पुत्र थे आगे पश्चिम दशा की ओर आगे बढ़ने लगे। जब वो पश्चिम दशा की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? चलते चलते चेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल था। तो उन्होंने आगे चलते चलते क्या देखा? एक विशाल जलाशय देखा जो एक समान समुद्र के समान विशाल था। और आगे मैत्रेय जी कहते हैं इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो। तो वो जो समुद्र का जल क्या था? बिल्कुल शांत था। और आगे मैत्रेय जी इसकी तुलना करते हैं किसके साथ? कहते हैं मानो किसी महापुरुष का मन हो और इसको इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की शरण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तो बड़े सुंदर रूप से इस श्लोक में मैत्रेय जी तुलना कर रहे हैं उस समुद्र के सागर की किसके साथ? एक संत के मन के साथ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है, पर इस विषय पर बल दिया जा रहा है कि आध्यात्मिकवादी व्यक्ति का मन किस प्रकार का होना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि उसका मन कैसे होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो क्या कारण है जबकि शास्त्र में कहा गया है कि आध्यात्मिकवादी का मन शांत होना चाहिए, हमें देखते हैं कि हमारा मन शांत नहीं है। आप भागवतम के 10वें स्कंद में कथा पढ़ते हो कि जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था जबरदस्ती, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र भेजा, संदेश भेजा भगवान को कि बचाओ मुझे। भगवान ने उस ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे पूछा कि क्या तुम्हारा मन शांत है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा जब तक तुम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में बड़े सुंदर रूप से मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि महापुरुष का जो मन है हर स्थिति में बिल्कुल शांत रहता है और वह हर स्थिति में अत्यंत प्रसन्न रहता है। जैसे कि भगवद गीता में इस विषय में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कि जो महापुरुष हैं वह हर स्थिति में उनका मन जो है शांत रहता है और प्रसन्न रहता है। तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा कर रहे हैं तात्पर्य में, और आगे तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भक्त है उसका मन सदा शांत होना चाहिए और निष्काम भाव से सेवा में जुड़ना चाहिए। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण श्लोकों का उपयोग किया है प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में। एक है भक्ति रसामृत सिंधु का प्रसिद्ध श्लोक, अन्या बिलासिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानवृतम अनुकूलन कृष्णो शिलालेम भक्तिर समान। इस श्लोक का उच्चारण रूपा गोस्वामी जी ने किया है और ये श्लोक हमें भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में प्राप्त होता है। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपा गोस्वामी जी को शिक्षा दी थी भक्ति संबंधित प्रयाग में, और महाप्रभु जी ने सनातन रूप दोनों भाइयों को यह आदेश दिया था कि वृंदावन में जाकर भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और दोनों भाइयों ने उनके भतीजे जीवा गोस्वामी ने जो लाखों श्लोकों का की रचना की, जिसके द्वारा ये दिव्य ज्ञान हमें वो दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने खास करके दो ग्रंथों का अनुवाद किया है भक्ति रूपा गोस्वामी के, एक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा का नाम है श्री उपदेश रामायण। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, रूपा रघुनाथ पदे कहे वे अकूति, कब वो देश शुभ दिन आएगा जब मुझे रूपा गोस्वामी जी के ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो हमें रूपा गोस्वामी जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो रूपा गोस्वामी जी श्लोक में कह रहे हैं न्या बिलास सुनियम, वो हमें उपदेश दे रहे हैं कौन सी भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है, और वो कह रहे हैं सबसे उत्तम भक्ति वो है जबकि हम भगवान की सेवा में निष्काम भाव से जुड़ते हैं बिना किसी उम्मीद की को रखे हुए। वैसे तो आप कहोगे भगवान सातवें अध्याय में क्या कहते हैं, चार परिस्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आता है, कहते हैं ना भगवान चतुर्विधा बजानते माम, चार परिस्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आता है। और ये चार प्रकार, चार श्रेणी के व्यक्ति कौन हैं, एक है जो दुखी है, दूसरा जिसे धन चाहिए, तीसरा जिज्ञासु, चौथा जो ज्ञान पर आधारित मेरी शरण में आता है। भगवान कहते हैं चार के चार जो ये हैं पुण्यात्मा हैं। भगवान गीता में ये भी कहते हैं कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं के पास जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है वह वर असल में मेरे द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं तीसरे अध्याय में कि देवताओं की बजाय मेरी शरण में आओ। तो एक रूप से देखा जाए अगर आपको धन चाहिए, अगर आप रोगी पीड़ित हो और इस स्थिति में आप भगवान की शरण में आते हो तो ये तो निष्काम भाव नहीं कहलाया जाएगा, ये तो सकाम भाव से आप जुड़ रहे हो भगवान के सेवा में। पर भगवान की भक्ति में इतनी गहरी शक्ति है कि चाहे आप भौतिक इच्छाओं को लेकर जुड़ो, पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओगे तो आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, आपको जो सकाम भाव है वो बदल जाएगा और इसके बदले निष्काम भाव का अनुकूल कर पाओगे। तो भगवान ने कहा कि चार परिस्थितियों में भक्ति मेरी शरण में आते हैं, पर इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है जो कि ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे उत्तम कोटि की भक्ति क्या है, वो है जबकि आप बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की शरण में जुड़ते हो। इसी विचार को कृष्णदास काविराज जी भी प्रस्तुत करते हैं चेतन चरितमृता नाम के ग्रंथ में। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसमृत सिंधु की रचना की और कृष्णदास काविराज जी ने 90 साल की आयु में नित्यानंद जी की प्रेरणा के द्वारा ये चेतन चरितमृता नाम ग्रंथ की रचना की, जिसमें हम शास्त्रों की का सिद्धांत भी प्राप्त करते हैं और महाप्रभु जी की लीला और उपदेश के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आप चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक है चैतन्य भागवत जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, एक और है चैतन्य मंगल जिनकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की, और एक है चैतन्य चरितमृतक जिसकी रचना कृष्णदास काविराज जी ने की है। तो कृष्णदास काविराज जी कहते हैं इस चैतन्य चरितमृत में, और प्रभुपाद जी इस श्लोक का उपयोग कर रहे हैं तात्पर्य की समाप्ति में, वो कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशंत। तो चैतन्य चरितमृत में कहा जा रहा है कृष्ण भगवान के जो निष्काम भक्त हैं वो हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, चाहे आप कठिन परिस्थिति में भी हो, चाहे आपको सुख भी हो। भक्त जो है अगर उसे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त भी होती हैं वो इससे प्रभावित नहीं होता, वो जानता है ये अस्थाई है और अगर भगवान मुझे कोई सुविधा दे रहे हैं तो मुझे इसका उपयोग करने दो, किसके लिए, भगवान की सेवा में। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा अगर आप निष्काम भाव से सेवा में जुड़ोगे तो आपका मन सदा स्थिर रहेगा, विचलित नहीं रहेगा और आप सदा प्रसन्न भी रहोगे। और इसकी तुलना में आगे कहा गया है कृष्ण भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जिन्हें कर्मकर्ण चाहिए, कर्मकर्ण एक प्रकार का सौदा होता है भगवान के साथ, हम आपके लिए ये यज्ञ करेंगे, ये दान देंगे और इसके बदले में हमें क्या चाहिए, कुछ लाभ चाहिए। जैसे आप भौतिक व्यापार करते हो तो कर्मकर्ण एक प्रकार का व्यापार है पर भगवान के साथ, तो आप कहोगे भगवान व्यापार भी करते हैं, हाँ आप उस भाव से जा भगवान गीता में कहते हैं ये यथम प्रपद्यन्ते, जिस भावना से कोई मेरी शरण में आएगा जितनी उसी भावना के अनुसार मैं उसे बुद्धि देता हूँ। फिर भक्ति मुक्ति, मुक्ति मतलब कि हमें मुक्ति चाहिए। भक्ति रसमृत सिंधु में कहा गया भक्त जो है मुक्ति की चिंता भी नहीं करता, भक्त के मन में केवल यह भावना रहती है कि मुझे भगवान के सेवा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में शिव जी कहते हैं पार्वती से नारायण फला सर्वे नाग कुतशन बेव्यति स्वर्ग प्रवण का नर केशव अपितुल्यता दर्शना। पार्वती से कहते हैं कि आप वैष्णव को समझ नहीं पा रहे, वैष्णव जो हैं भगवान के सेवक ले नरक में जाने को भी तैयार हैं। तो भगवान कपिला देव कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनमें किसी प्रकार की मुक्ति की भी इच्छा नहीं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि उन्हें कहा जाता है जो कि अनेक प्रकार की योगिक सिद्धियां चाहते हैं। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। आज के इस कलियुग में ये असंभव है, पर एक समय था कि आप इन योगिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते थे। अने आठ प्रकार की सिद्धियों में एक सिद्धि है जिसका नाम है प्रपति सिद्धि। प्रपति सिद्धि के द्वारा अब एक स्थान में रहते हुए अपने हाथ को किधर भी पहुंचा सकते हो और जो वस्तु वहां हो उसे उठा भी सकते हो। अच्छी सिद्धि है ना। मतलब आप मान लो अपने घर में बैठे हो और जितने ज्वेलरी स्टोर हैं सबका सोना उठाना चाहो या अपने हाथ को फैला सकते हो स्विट्जरलैंड के बैंकों तक, सब खजाना बैंकों का उठा सकते हो और कोई देखेगा भी नहीं। तो आज के युग में ये प्रपति सिद्धि असंभव है। से अनीमा लगीमा, छोटे से छोटा बना। तो मुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि मतलब जिन्हें आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां चाहिए, तो इन सब को कहा गया कामी। ये सब की भौतिक इच्छाएं हैं, इसके लिए अशांता। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। ये जो दूसरे जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं उनका मन सदा अशांत रहे। वो जो निष्काम भाव से जुड़ेंगे उनका मन हर परिस्थिति में क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो इस श्लोक में मैत्री ऋषि जो कह रहे हैं कि प्रचेताओं पश्चिम दीक्षा की ओर जा रहे थे और उन्होंने ये बड़ा सुंदर जलाशय देखा, वो जो बिल्कुल शांत था। तो आध्यात्मिक वादी का मन जो है शांत रहना चाहिए। भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम है, क्या है नाम छठे अध्याय का, ध्यान योग। और इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि हमें मन को क्या करना है, बंधु बनाना है, शत्रु नहीं। तो मन बंधु कब माना जाता है, मन बंधु जब माना जाता है जब मन शास्त्र गुरु के आदेश के अनुसार चल रहा है। और मन आपका शत्रु कब बनता है, मन शत्रु जब माना जाता है जब मन में शास्त्र के विरोध विचार। तो भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं मन पर विजय प्राप्त करो, मन को बंधु बनाओ। और जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए हार जीत, सुख दुख, आदर अपमान, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत एक समाज में अगर हमारा कोई अपमान कर दे तो हम बहुत बुरा महसूस करते हैं ना। हमारे दिल में आता है कि इसका हमें बदला लेना चाहिए। आप क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो आपके शरीर का अपमान हुआ है। पर अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आप क्या देखते हो, ये शरीर तो केवल थोड़े समय के लिए है और वास्तविकता क्या है, आत्मा है आपका असली। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए हर स्थिति में वो संतुष्ट रहेगा। आगे 16वें अध्याय में भगवान शरीर की तपस्या, जीभ की तपस्या, मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। मन की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं कि मन को हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। भौतिक स्थिति में आप ये देखते हो कोई संतोष नहीं, सच बात है। आप अखबारों में देखते हो बड़े बड़े व्यापारी जिनके पास इतना धन है आगे की 100 पीढ़ी के लिए, वो इतना प्रयास कर रहे हैं जैसे भूखे हैं ना, सब धन बढ़ाना चाहते हैं। और 7वें स्कंद में नारद मुनि जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि एक भूखा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जब आप उसे कुछ भोजन दो खाने के लिए, प्यासा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जब आप उसे पानी दो पीने के लिए, हाँ। क्रोधित व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाता है, कई बार आपको गुस्सा आता है किसी पर, आप थोड़ी देर के चिल्ले चिल्लाते हो, डांटते हो, फिर गुस्सा ठंडा हो जाता है। पर नारद मुनि जी कहते हैं कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब लालची व्यक्ति को जितना दोगे उसे क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत कम है, मुझे तो और आगे बढ़ना है। तो इसलिए भगवद गीता में मन की तपस्या के विषय में क्या कहा गया है, हर स्थिति में संतुष्ट रहो। भगवान गीता में कहते हैं मन मन भाव मद भक्त हो मद्याजी मम नमस्कृत माँ में वाशी सत्यम दे प्रति जने प्रयोश में। कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान भगवद गीता का सार प्रस्तुत कर रहे हैं और सार को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं क्या, सर्वधर्म परित्यज्य सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में हो, और फिर कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो, और अगर इन चीजों का पालन करोगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, मेरे धाम। पर इसके साथ भगवान ये भी कहते हैं बिना शंका के 100%। आपको भौतिक समाज में कोई कह सकता है 100% सफलता प्राप्त होगी, अब बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ ऑपरेशन के लिए, वो कहेगा 100% ऑपरेशन कामयाब होगा, कहेगा भी तो आपसे दस्तखत ले लेगा कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उसको पकड़ना मत, है ना। तो भौतिक समाज में कोई नहीं कह सकता, पर भगवान कहते हैं मन मन बाबा मन भक्त मान दिया जी नमस्कार बिना शंका के तुम काम लौटोगे मेरे धाम में लौटोगे। इसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से तस्मा सर्वेश कलेश मम मनस्मा युद्ध छ, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि इस श्लोक में भगवान हमें संक्षेप रूप में कृष्ण भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। क्या, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए क्या करो, तुम अपना भौतिक कर्तव्य का पालन करो, ये नहीं भौतिक कर्तव्य करो और मन और बुद्धि द्वारा भौतिक विचारों का स्मरण करो। तो इस श्लोक में और इसके आगे के तात्पर्य में इस विषय पर खास बल दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं उनका जो मन है विचलित नहीं होना चाहिए, उनका मन सदा शांत होना चाहिए। क्या कहोगे, इच्छा तो ये हम सबकी है पर अनुभव ये करते हैं कि ना मन शांत है और मन चंचल भी है। अर्जुन ने इस विषय में क्या कहा भगवद गीता में, चंचला ही मना कृष्णा। उन्होंने कहा हे भगवान, मन को वश में लाना तो वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। तो आप कहोगे जब अर्जुन की स्थिति थी तो हमारी क्या स्थिति रहेगी। अर्जुन ने कहा आज नहीं 5000 साल पूर्व कि मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से ज्यादा कठिन है, तो हमारी क्या स्थिति है। तो क्या कहें कि मन को वश में ला सकते हैं हम कि नहीं ला सकते, आपका क्या विचार है। भगवान ने भगवद गीता भक्ति योग के अध्याय में कहा कि भक्ति योग के नियम के पालन के द्वारा आप मन को वश में ला सकते हो। जैसे कि आप भक्तम के सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा प्राप्त करते हो। प्रहलाद महाराज एक दिन जब लौटे थे अपने पाठशाला से तो उनके पिता ने पूछा ये बताओ कि आज पाठशाला में क्या शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद महाराज के दो अध्यापक थे जिनका नाम था संद और आनंद, जो थे शुक्राचार्य के पुत्र और हिरण्यकशिपु ने खास आदेश दिया था कि जो विष्णु के प्रति मेरे बेटे के दिमाग में भूत सवार है, आकर्षण है, उसको तोड़ो। तो पिता ने ये उम्मीद की थी कि बेटा कहेगा आप हो सर्वश्रेष्ठ। तो जब पूछा तो बेटे ने क्या कहा, उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया जो कि उन्होंने नारद मुनि जी के द्वारा प्राप्त किया था जब अपनी माता के घर में थे। और ये नवदा भक्ति का उपदेश क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए 9 साधन हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, आश्रम वंद्यम, दस्यम, सख्यम, आत्मनिर्भर। सर्व 9 में सबसे पहले क्या है? श्रवणम, और आगे है कीर्तनम। श्रवणम का अर्थ है कानों से सुनना, कीर्तनम का अर्थ है जीभ से उच्चारण करना। तो अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे फिर विष्णु स्मरणम संभव होगा, और अगर आप श्रवणम कीर्तनम ध्यान से नहीं करोगे तो विष्णु स्मरण जो है असंभव रहेगा। तो जैसे भगवान ने कहा 12वें अध्याय में, भक्ति योग के नियमों के पालन के द्वारा तुम मन को शुद्ध बना सकते हो, मन को स्थिर बना सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो। तो भक्ति योग की शिक्षा का अर्थ क्या है? शरणम कीर्तनम अनेक नियमों का लाभ उठाना, इनका पालन करना, और अगर आप इनका लाभ उठाओगे फिर ये विष्णु स्मरण जो है संभव हो पाएगा। और अगर आप शरणम कीर्तनम का लाभ नहीं उठाओगे, शरणम कीर्तनम का उपयोग नहीं करोगे, शरणम कीर्तनम नहीं करोगे तो विष्णु स्मरण संभव हो पाएगा नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, भगवान ये नहीं कहा पहले में चिंतन करो बाद में सुनो और उच्चारण करो। उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। भौतिक समाज में भी आप को देख सकते हो, अगर आप किसी व्यक्ति किसी विषय की चर्चा करो तो उस विषय का फिर आप स्मरण भी करते हो, अगर आप किसी विषय का की चर्चा नहीं करो तो कभी उस विषय की स्मरण करते हो। मान लो आप अमेरिका के विषय में बात कर रहे हो, फिर अमेरिका कैसा है, उसके क्या लक्षण हैं, ये भी विचार आएंगे। तो उसी प्रकार अगर आप हरि नाम का जाप करो, शास्त्रों की कथा का उच्चारण करो, फिर विष्णु स्मरण भी संभव हो पाएगा। और महान संतों ने हमें कहा है विष्णु स्मरण के विषय में कि अनेक साधन हैं, नामा रूपा नीला गुना, ये अनेक रूप हैं जिनके द्वारा आप भगवान का चिंतन कर सकते हो और अपने मन को स्थिर बना सकते हो। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के इस कलयुग के वातावरण में मन स्थिर नहीं बन सकता, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मन को वश में नहीं ला सकते। मन को वश में ला सकते हो भक्ति के बुद्धि के उपयोग के द्वारा। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। आप कई बार साधारण समाज में भी देखते हो, मन कहता है दफ्तर नहीं जाओ, मन कहता है ये गलत काम करो, बुद्धि कहती है नहीं 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 ये शास्त्र के विरोध है, इसका भयंकर परिणाम है, तो आप नहीं करते, है कि नहीं। तो भगवान ने गीता में भी ये कहा है कि मन को वश में लाओ कैसे? बुद्धि के द्वारा। भगवान से अर्जुन ने पूछा था क्या कारण है कि जानते हुए भी आप गलत कार्य करते हो, भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसे राजगुण समुद्भव। भगवान ने कहा कामा के प्रभाव के कारण जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं। फिर आगे भगवान ने ये भी कहा कि इसका निवास का स्थान कहाँ है। जैसे आप पहचानते हो कि ये शत्रु है, फिर आप जानना चाहते हो उग्रवादी छुपा हुआ कहाँ है, तो भगवान आगे क्या कहते हैं, कहाँ है इसका निवास का स्थान? मन बुद्धि और इंद्रिया। इसका तो ये आपका जो आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है कहाँ निवास कर रहा है? मन में बुद्धि में। तो भगवान आगे कहते हैं कि इसको नष्ट करो ज्ञान के तलवार से। दूसरे शब्दों में ज्ञान के द्वारा आप अज्ञानता को दूर कर सकते हो। जैसे चैतन्य चरितमृत में जहाँ भगवान ने कहा कृष्ण सूर्य सम माया हया निकारा, यहाँ कृष्ण ताहिनी माया राधिकारा। कृष्णदास कावेरी जी कहते हैं जिसका जहाँ रोशनी हो अंधेरेपन का प्रभाव नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ कृष्णा हो कृष्णा भक्ति हो वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। आप अनुभव कर सकते हो जब आप सुबह जागते हो, मंगल आरती में आते हो या मंगल आरती घर में करते हो, क्योंकि कई जो मंदिर से दूर रहते हैं वो घर में भी कर सकते हैं, जो सावधानी से सुबह 16 माला का जाप वगैरह करते हो, तो सारा दिन आप अपने आप को बड़ी अच्छी तरह भक्ति में रख सकते हो, भगवान की लीलाओं उपदेश इत्यादि का स्मरण कर सकते हो। और जो कि मंगल आरती नहीं करते, माला का जाप इत्यादि नहीं करते, तो सारा दिन आपको जब मन है अशांत रहेगा, मन में बहुत विचार रहेंगे जो केवल बढ़ते ही जाएंगे, कभी भी इनको वश में नहीं ला सकते, केवल बढ़ते ही जाएंगे। इसके लिए इस श्लोक में और भगवतम के अनेक श्लोकों में इस विषय पर बल दिया गया है जो कि यहाँ दिया जा रहा है। वो क्या है? मन पर विजय प्राप्त करो। और ये संभव है आज के इस कलयुग में भी भक्ति योग की शिक्षा के द्वारा। आप देख सकते हो सारे विश्व में, पश्चिम देशों में भी, जहां किसी ने कृष्ण और राम का नाम सुना भी नहीं था, जहां बचपन से ही लोग पले थे पाप के वातावरण में, आज हरि नाम के द्वारा, भक्ति के नियमों के द्वारा आज इस ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि मन इंद्रियों को वश में कर रहे हैं। और तो ये नहीं सोचना कि कलयुग में ये संभव नहीं, संभव है, पर अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हर रूप से हमारा सहयोग देंगे। तो संक्षेप में इन श्लोकों में प्रचेताओं की कथा दी जा रही है। प्रचेता एक राजा के पुत्र थे, उन्होंने तपस्या का पालन किया। तपस्या परम ज्योतिर भागवतम अध्योक्ष जब, भागवतम के तीसरे स्कंध में ब्रह्मा जी कहते हैं परम भगवान अधोक्षज हैं, उनको समझना इतना सरल नहीं है, पर तपस्या के माध्यम से आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या, इन तीन चीजों को कभी नहीं त्यागो। जो आत्मज्ञानी है उन्हें भी तपस्या का पालन करना चाहिए, यज्ञ का और दान का। तो प्रचेता हमें उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों के लिए इतनी गहरी तपस्या का पालन किया, उस मंत्र का उच्चारण किया जो कि उन्हें शिव जी द्वारा प्राप्त हुआ था, और इसके द्वारा उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ। उनका जो मन था बिल्कुल शांत था, क्यों? क्योंकि परम भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो उसी प्रकार इस कलयुग में भी आपका मन शांत रह सकता है, बन सकता है, अगर हम ये हरे नाम का लाभ उठाएं। कली काले नामा रूपा कृष्ण अवतार, आप पूछोगे कि हमें भी उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो कि प्रचेताओं ने किया। आप भागवत में अनेक मंत्रों के विषय में पढ़ते हो, तो इन मंत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, ये महामंत्र में ही सारे गुण हैं। कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं इस महामंत्र के द्वारा, और जो व्यक्ति भी महामंत्र का उच्चारण करे सावधानी के साथ, हृदय में शुद्धि प्राप्त होगी, अज्ञानता दूर होगी, और आप ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जैसे यहाँ कहा जा रहा है महापुरुष का मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, तो आपका मन जो है प्रसन्न भी रहेगा और शांत भी रहेगा। और अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएं फिर इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। बाबा जी एक उदाहरण देते थे कि एक समय एक वैश्य का घर था और कलकत्ता में, और वैश्य के घर के सामने एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण सज्जन बरामदे में बैठकर ऐसा दिखावा करते थे कि मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, पर मन में वो यही देख रहा था, सोच रहा था ये वैश्य के पास अभी गिराक कौन जा रहा है, कितनी देर वो अंदर रह रहा है, अगला गिराक कौन आ रहा है। और वो वैश्य सोचती थी मैं इस पाप के धंधे में फंस गई हूँ, शायद अगला जीवन मुझे प्राप्त हो एक ब्राह्मण के रूप में कि मैं भी शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को सुधार सकूं। तो उस इलाके में आग लग गई जिसमें दोनों वैश्य भी मर गई और ब्राह्मण भी। यावदूत आए ब्राह्मण के पास उसे नरक में ले जाने के लिए। ब्राह्मण ने कहा आप गलत पते पर आ गए हो, आपको तो उस वैश्य के पास जाना चाहिए। मैं तो हमेशा शास्त्रों को सामने रखकर पढ़ता था, वो वैश्य धंधा गंदा काम कर रही थी। तो यहाँ दूता ने कहा वो वैश्य पाप के धंधे में जुड़ी हुई थी, पर मन में यही सोच रही थी सदा क्या कि मैं ब्राह्मण कैसे बनूं, और तुम दिखावा कर रहे थे कि तुम बड़े पंडित हो, पर तुम सोच रहे थे सदा वो वैश्य के भोग विलास के भविष्य में, तो तुम आओ सजा वो करने। तो हमें पखंडी भक्त नहीं बनना चाहिए, और ये हरि नाम का लाभ उठाकर, शास्त्र की शिक्षा का लाभ उठाकर आप विष्णु स्मरण भी प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ बड़े सुंदर रूप से मैत्रेय ऋषि एक महापुरुष के मन कर की तुलना कर रहे हैं किसके साथ, एक विशाल जलाशय के साथ जो समुद्र के समान विशाल था और बिल्कुल शांत था। तो जैसे समुद्र का पानी शांत रहता है, हमें अपने मन को भी शांत बनाना है, जो संभव है इस कलियुगा में भी चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा के कारण, अगर हमें महामंत्र का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।